शांति। आज की नुमा शाम हमारे लिए बहुत सुंदर है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बाबा के दो दो नूरे रतन आज हम सबके बीच में विराजमान है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों नूरे रत्नों का रूहानी इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इन दोनों नूरे रत्नों की विशेषता क्या है कि दोनों ही मुंबई महानगरी से निकले हुए रत्न हैं। और दोनों की और एक विशेषता है कि दोनों ने ही मम्मा बाबा आदि रत्न दादियों और दादाओं की पालना ली है। न सिर्फ पालना ली है लेकिन उनके हाथों से गढ़ी हुई ये त्याग और तपस्या की दोनों ही मूर्त है। और दोनों के जीवन की और एक विशेषता ये है कि दोनों ने विदेश सेवाएं भी की और दोनों मधुबन निवासी भी हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं दोनों में हम देखते हैं, समान समान है। और इसलिए आज हमने सोचा, क्योंकि आज शीलू बहन का जन्म दिवस भी है, तो हमने सोचा और दीदी के, शीलू दीदी के जीवन में निर्मला दीदी का भी बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए हमने सोचा दीदी के जन्मदिन, शीलू दीदी के जन्मदिन पर अगर निर्मला दीदी हमारे साथ हो तो कितना न बड़ा हमारे लिए वरदान है। तो शीलू दीदी भी बहुत खुश होंगे आज कि आज हमारे बीच में निर्मला दीदी भी हैं। और निर्मला दीदी को भी आज अवश्य खुशी होगी कि उनके हाथों से पली हुई उनकी रत्न आज उनके सामने बैठी हुई है। तो दोनों की विशेषताएं तो बहुत हैं। दीदी तो हमारे मुंबई में मेडिकल स्टडीज पूरी किए निर्मला दीदी ने 62 में, और फिर आपको बाबा मिले। और पहले शायद दीदी मम्मा से डायरेक्ट ज्ञान सुना, दीदी ने मम्मा से ज्ञान सुना ना आपने पहले, बाबा से भी पहले। हाँ, बाबा से भी पहले निर्मला दीदी मम्मा से मिले। और शीलू बहन की विशेषता ये है कि शीलू बहन बाल्यकाल से बाबा के पास आए, और बाल्यकाल में न सिर्फ बाबा के पास आए लेकिन डायरेक्ट बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ है। और फिर निर्मला दीदी को चूंकि पढ़ाई तो हो चुकी थी, बाबा मिल गए थे, तो दीदी ने बाबा की राय सलाह से सेवा केंद्र भी खोला और क्लिनिक भी खोला। और सेवा केंद्र की विशेषता ये रही कि दीदी वो पहली कन्या रही जिसको उनके लौकिक पिता ने सेवा केंद्र दहेज में दिया। और उस सेवा केंद्र में फिर दीदी ट्रेन, शीलू दीदी ट्रेनिंग में गए थे। तो ये विशेषता है। और फिर तो निर्मला दीदी को बाबा ने 71 में विदेश यात्रा में भेजा। 71 से 78 तक दीदी विदेश की अलग अलग सेवा स्थानों पर गए। डिटेल तो हम उनके ही मुखारविंद से सुनेंगे अभी। और फिर 78 में सिडनी में बेस्ड रहे और पूरे 30 वर्षों तक वहां रहकर एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा की सेवाओं का विस्तार किया। और फिर 2008 में तो बाबा ने निर्मला दीदी को ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर पोस्ट पर बिठाया। और अभी हम जैसे जानते हैं कि हमारी दादियां अव्यक्त होते चली गई हैं, तो यज्ञ की जिम्मेवारी आपके कंधों पर और बढ़ती गई है। तो वर्तमान में आप हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। और शीलू दीदी का तो पहले दिन हमने डिटेल में सुना दिया था आपको। तो मैं शुरुआत करती हूँ निर्मला दीदी से दीदी आप मुंबई में जब मेडिकल स्टडी पूरी हो गई तो ज्ञान में आने का अवसर आपके जीवन में कैसे खड़ा हुआ, कैसे शुरुआत हुई?
ओम शांति। मम्मा बॉम्बे में आई थी और उषा रमेश जो बॉम्बे के थे, उषा मेरे साथ पढ़ती थी। फर्स्ट ईयर इंटर साइंस हमने साथ में किया। तो जब उषा को पक्का निश्चय हुआ तो उसने सेवा आरंभ की और मम्मा बॉम्बे में आई थी तो मुझे निमंत्रण दिया कि संडे संडे मम्मा वाटरलू मेंशन में प्रवचन पब्लिक देती थी, उसमें उसने बुलाया। पहले तो उसने कार्ड भेजा परंतु मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक शुक्रवार को उसने फोन किया कि संडे तुम क्या करती हो। उस समय मैं हॉस्पिटल में काम करती थी और संडे हमको फ्री मिलता था और संडे उस संडे ऑन ड्यूटी, मतलब घर में रहना है, वहाँ ही हॉस्पिटल में कुछ भी इमरजेंसी है तो अटेंड करनी है, परंतु दो घंटा शाम को फ्री होता था। तो मैं मम्मा के प्रवचन में गई। प्रवचन के बाद फौरन उषा ने मुझे पकड़ा और कहा तुम कोर्स करोगी? मैंने कहा ठीक है। तो संडे मम्मा का प्रवचन सुना, मंडे से कोर्स किया। तो कोर्स रोज शाम को दो घंटा निकाल के हॉस्पिटल से जाती थी और कोर्स पूरा हुआ फिर शाम को ही टाइम मिलता था, हम जाती रहती थी। मम्मा का क्लास सिर्फ हमें संडे मॉर्निंग में सुनने मिलता था क्योंकि ड्यूटी होती थी, सिर्फ शाम को दो घंटा फ्री होता था। तो फिर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने मेडिकल स्टडी इसलिए की थी कि सोशल सेवा करें। तो जब ज्ञान मिला तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी रूहानी सोशल सेवा है, मैं इसी में ही लग जाऊं। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूं और इसी सेवा में लग जाऊं? मन का नहीं, बाबा से पूछना। फिर जब मधुबन आई बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा नहीं तुमको तो डबल डॉक्टर बनना है, दोनों सेवा करनी है। तो इसी रीत से फिर चलती रही और जो भी जीवन में मोड़ आता था ब्रह्मा बाबा से राय लेती थी, क्योंकि मेरा विचार था कि कोई गांव में जा के सेवा करूं, क्योंकि मुंबई में तो गली गली में दो दो एक दो डॉक्टर होते हैं। तो मेरे लौकिक पिता की इच्छा थी कि कामदिवली में जहां हम रहते थे वहीं सेवा करें। तो बाबा से मैंने पूछा, बाबा ने कहा कांदीवली भी तो गांवड़ा है ना, क्योंकि 62-63 नहीं, बाबा को 64 में मैं मिली तो उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था कांदीवली। तो फिर बाबा के कहने से मैंने कांदीवली में डिस्पेंसरी भी खोली और उस समय सिर्फ दो सेंटर थे मैं ज्ञान में आई तब, वाटरलू और सायन। तो सायन में ब्रिजेंद्र दादी थी, वाटरलू में उस समय पुष्प शांता दादी और निर्मल शांता दादी थी। तो हमने सोचा कि कोई तीसरा सेंटर भी हो, और रमेश भाई ने पूछा कि आप उस तरफ कांदीवली मलाड बोरीवली तरफ मकान देखो। तो मैंने सोचा कि मकान देखने के पहले मैंने सोचा हमारे लौकिक पिता का खुद बंगलो था और उसके पीछे प्लॉट था। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं उसकी मांग करूं मेरे लौकिक पिता से? तो बाबा ने कहा यदि लौकिक पिता जमीन देगा अलौकिक पिता मकान बना के देगा। तो मैंने लौकिक पिता से पूछा, वो कहे लड़कियां इतनी नजदीक रहे ये ठीक नहीं है, तुम दूसरे कहाँ फ्लैट ढूंढो, मैं पैसा दूंगा। तो मैंने सोचा कांदीवली में प्रैक्टिस है तो कांदीवली में ही सेंटर खोले। तो फिर मकान ढूंढते ढूंढते दो फ्लैट लिए और उसका पूरा फर्निशिंग का खर्चा ये वगैरह लौकिक पिता ने दिया।
तो बहुत अच्छा हमने सुना कि दीदी कैसे ज्ञान में आए और कैसे मम्मा बाबा और लौकिक पिता की मदद से आगे बढ़े। अभी मैं दीदी शीलू से पूछूंगी कि दीदी आप कैसे बाल्यकाल में बाबा के पास पहुंचे?
मेरा सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारियों से कांटेक्ट 1958 में हुआ। तब मैं केवल 10 साल की थी। मेरी लौकिक माता जी मुझे एक गीता पाठशाला में लेके गई। हमारी बिल्डिंग में गीता पाठशाला खुली थी मुंबई में, कुर्ला वाडिया स्टेट कहते थे उस समय। तो हमारी बिल्डिंग में खुली थी वो गीता पाठशाला और मेरी लौकिक माँ वहाँ जाती थी कोर्स वोर्स जो उस समय कोर्स तो कुछ होते ही नहीं थे, लेकिन वहाँ जाती थी और ज्ञान सुनती थी। तो एक दिन वो मुझे ले गई, मैं 10 साल की थी केवल, 58 की बात है। तो और सीधा मुरली में बैठ गई, परंतु मैंने मुरली पूरी समझी जैसे कि मेरे लिए कोई नई बात थी नहीं, ज्ञान को भी पूरा जैसे समझ लिया ऐसे मुझे लगा। तो एक शब्द भी हमने मिस नहीं किया, सुनती रही एकाग्रता से और समझ गए ऐसे लगा। तो वो मेरा बिगिनिंग था। लेकिन फिर तो स्कूल जाते थे तो सब बातें तो भूल जाते हैं। लेकिन 1959 दिसंबर में बाबा मुंबई आए थे। बाबा हर साल मुंबई आते थे, खास सर्दियों में, और 3-3 महीना मुंबई में रहते थे क्योंकि आबू में बहुत ठंडी होती थी, बहुत ठंडी, दिसंबर जनवरी फरवरी ज़बरदस्त ठंडी होती थी। तो डॉक्टर्स के कहने अनुसार भी मुंबई गर्म शहर है, मतलब वहाँ ऐसी ठंडी तो नहीं होती है माउंट आबू जैसी, वहाँ तो हर साल सारा साल एक जैसा ही लगभग होता है। तो बाबा मुंबई आते थे, अलग से एक फ्लैट लेते थे किराए पर, और 3 महीने के लिए वो बाबा वहाँ रहते थे। तो बाबा रोज़ ब्रह्मा भोजन रखते थे, कहीं न कहीं के भाई बहने आते थे, करीब 25-30 वह आते थे और बाबा दिन में ब्रह्मा भोजन रखते थे बच्चों के साथ। और तो हमारी लौकिक मदर को भी निमंत्रण मिला, गीता पाठशाला में जाती थी तो हम मुझे भी लेके गई। और वो दिन था जब ब्रह्मा भोजन में सब बैठे, और ब्रह्मा भोजन ऐसे नहीं जैसे अभी होता है क्योंकि यहाँ भी तो हजारों की भीड़ है, उस समय तो थोड़े ही होते थे। तो सब लाइन सब बैठे रहते थे और बाबा सब नीचे बैठते थे, कोई टेबल कुर्सी नहीं होते थे, बाबा भी नीचे बैठते थे और एक एक करके बाबा के पास आते थे। पहले बाबा से दृष्टि लेते थे, फिर बाबा की गोद में, जैसे सिर रखते ना बाबा की गोद में, तो बाबा की गोद में सिर रखते थे और बाबा उनको पीठ, उनकी पीठ थपथपाते थे। फिर जैसे बाबा से दृष्टि लेते थे और बाबा उनके मुख में गिट्टी डालते थे, माना भोजन का, एक जैसे रोटी का टुकड़ा सब्जी मुँह में डालते थे, और फिर कोई ना कोई वरदान साथ में बाबा देते ही थे और फिर वो वापस जाते थे। तो मेरी लौकिक माँ का जब मैंने देखा कि वो, मैं पहली बार बाबा से मिली, कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो जब जैसे मेरी माँ लौकिक वापस अपने स्थान पर गई तो मैं उठने में संकोच कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं, मैं छोटी बच्ची हूँ, 10-11 साल की, मेरे लिए ये है या नहीं है, तो बड़ों के लिए है। लेकिन बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची, आओ बच्ची आओ। तो जैसे ही बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ, तो मुझे ऐसे करंट महसूस हुई जैसे मेरा पिता मुझे बुला रहा है। मेरे लौकिक पिता की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, मैं तब केवल 3 दिन की थी कि जन्म ही हुआ था, और रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी। और उसी दिन मेरे मदर को जैसे ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार में दिखे थे, एक फरिश्ता, और वो उनके सामने आए और मेरी लौकिक माँ के आगे ऐसे हाथ पसारे और कहा कि ये बच्ची मेरी है, मैं इनका पिता हूँ और मुझे दे दो। तो अपना अनुभव सुनाती है, तो मेरी लौकिक माँ ने उसको देखा, एंजल बिल्कुल लाइट लाइट फरिश्ता रूप। तो मेरी लौकिक माँ ने मुझे उठा के जैसे उनको दिया, 3 दिन की थी केवल, और फिर तो ओझल हो गया ही, वो दृश्य ओझल हो गया। लेकिन उसको ये ज़रूर संकल्प आया कि कौन था और ऐसे कैसे कह दिया मैं इनका पिता हूँ, तो कोई फरिश्ता आए और ऐसे कहा। और फिर मेरे पिता की उसी दिन ही शाम को डेथ हुई, जबकि सुबह ये अनुभव उनको हुआ। बस फिर तो बात तो सब भूल गए थे, लेकिन मेरी मौकिक माँ ज़रूर बताती थी कि ये अनुभव हुआ है। और फिर जब बाबा की गोद में, बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ, तो मुझे लगा मेरा पिता मुझे बुला रहा है, और मैं दौड़ करके, थोड़ा दूर बैठी थी, दूर दूर ऐसे बैठे थे, और मैं दौड़ करके बाबा के पास आई और एकदम बाबा को ऐसे पकड़ लिया जोर से, हाँ, जैसे करंट आई ना हमको, मैग्नेटिक पुल। और फिर बाबा ने उसी समय मेरी पीठ थपथपाई और बाबा ने कहा कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये बाबा के उस समय के शब्द थे, तो ये वरदान उसी समय दिया। तो इसी प्रकार फिर तो मैं सेंटर पर जाती रही, बाबा की मुरली चलती थी, तो मैं रोज सुबह पहले बाबा की मुरली सुनने जाती थी, स्कूल यूनिफॉर्म में पहले मुरली सुनती थी और उसके बाद फिर स्कूल जाती थी। तो मुझे याद है निर्मला दीदी भी उन्हीं दिनों में ही आए थे, मतलब वो भी स्टूडेंट थे, वो तो बहुत दूर रहते थे, मैं तो लगभग वहीं रहती थी, हमारा घर वहीं था, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं था आना, क्योंकि स्कूल जाना, उसके पहले मुरली सुनना, फिर स्कूल जाना। तो रोज़ ये सिलसिला चलता था और बाबा के साथ बहुत ही नज़दीकी अनुभव किया। फिर तो मैं मधुबन आई एक साल के बाद, जब ये रमेश उषा की बात कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे रमेश भाई उषा बहन, ये पवित्र युगल है, कैसे बाबा, इन्होंने गंधर्व विवाह का ही रूप था और बाबा ने इनको मधुबन में निमंत्रण दिया, ये मधुबन आए थे। तो जो पार्टी मधुबन में उस समय 61 में आई थी, मैं भी उसी ग्रुप में ही थी और मैं मधुबन आई रमेश भाई उषा बहन के उसी ग्रुप में, और वहीं पर मैंने बाबा के आगे इंग्लिश में पोइट्री सुनाई, थोड़ा छोटा लेक्चर भी था, इंग्लिश में दिया। तो बाबा ने उसी समय मुझे वरदान दिया, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में मीडियम, मतलब इंग्लिश स्कूल बॉम्बे में तो बहुत ही अच्छे स्कूल हैं, तो मैं उसमें पढ़ती थी। तो बाबा ने उसी समय मुझे वरदान दिया कि बच्ची बाबा तुमको विदेश भेजेगा, सीधा उसी समय ही बाबा ने ये वरदान दिया, जबकि मैं इतनी छोटी थी, 12-13 साल की होगी, लेकिन बाबा ने मुझे ये वरदान दिया। पर फिर तो पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं। और हम बॉम्बे में रह करके मधुबन में भी आए और फिर सेंटर पर भी जाते रहे और पढ़ाई भी साथ साथ पढ़ते रहे। तो शुरुआत
तो इस प्रकार से दीदी बाल्यकाल में बाबा के पास आई। अभी निर्मला दीदी से पूछना चाहूंगी, दीदी जब आपने सेवा केंद्र खोला तो उसमें किस प्रकार की एक्टिविटीज चलती थी और कैसे ट्रेनिंग सारी प्रोग्राम का आयोजन होता था?
क्या था कि सेंटर खुला तो एक्टिविटी तो जैसे सेंटरों में होती है, मॉर्निंग मॉर्ली दिन में 4 बजे माताओं का क्लास, शाम को फिर इवनिंग क्लास। और ब्रह्मा बाबा के दिनों में मधुबन में जो भी कोई भी आते थे ना, तो वो ट्रेनिंग नहीं चलती थी, क्योंकि सब समझते थे हम तो ब्रह्मा बाबा से ही सुनेंगे, तो ब्रह्मा बाबा ट्रेनिंग नहीं कराते थे। उस समय उन दिनों में अमृतसर में ट्रेनिंग चलती थी नए नए कुमारियों की, चंद्रमणि दादी कराती थी।
ब्रह्मा बाबा के बाद की बात है, ब्रह्मा बाबा की,
ब्रह्मा बाबा के सामने
सामने
ये नई ट्रेनिंग यहाँ नहीं होती थी माधोबान में।
बाबा के साथ ही मिलन होता था, ट्रेनिंग यहाँ क्या हुई?
अमृतसर में चंद्रमणि दादी ट्रेनिंग कराती थी और काफ़ी पंजाब के कुमारियों को दादी ने तैयार किया। और बम्बई में सोचा कि चलो कुमारियों की ट्रेनिंग करें, तो इसलिए बम्बई में जो भी कुमारियाँ थी उनकी ट्रेनिंग रखी गई। उसमें शीलू बहन 3-4 दिन की ट्रेनिंग होगी,
15 दिन की थी,
15 दिन
15 दिन की ट्रेनिंग थी। और सबको छुट्टियां थी, अक्टूबर महीना था, दिवाली की छुट्टियां भी थी। कन्याओं की ट्रेनिंग रखी, जो मकान इनों को मना पिता ने दिया तो उसमें ट्रेनिंग बाबा ने कहा रखो, तो उसमें मैं भी एक थी कुमारी उस ट्रेनिंग में।
तो ट्रेनिंग के अंत में क्या हुआ कि शील दादी ध्यान में गए, और ध्यान में गई और एक एक कुमारी के पास जाकर उसका जैसे कि चार्ट बनाया, तो आत्मा को ड्रॉ करके अंदर यदि विकार है तो काला काला दाग, और यदि उनकी शक्ति चारों ओर फैलती है तो जैसे किरणें आत्मा में से निकलती थी, ऐसे सबका एक एक का चार्ट बाबा ने लिख कर दिया। तो एक ही बार हुई ट्रेनिंग वो, और 15 दिन की हुई,
8 दिन या 15 दिन याद नहीं, पर याद नहीं है, लेकिन काफी ऐसे नहीं गई, 2-4 दिन नहीं, ज्यादा थी।
तो समझो वो पहली ट्रेनिंग हुई और लास्ट ही ट्रेनिंग थी वो। उसके बाद तो जब बाबा अव्यक्त हुए फिर तो यहाँ ट्रेनिंग शुरू हो गई।
दीदी उस ट्रेनिंग में जो भी कन्याएं थी उसमें से कितनी अभी बाबा के पास है? उस ट्रेनिंग में जो कन्याओं ने हिस्सा लिया उसमें अभी बाबा के पास कितनी कन्याएं हैं?
काफी है निकली,
बहुत निकली, ये सब दिव्या बहन जैसे
योगिनी है,
ये सब उस समय
मेरा
बॉम्बे की जो अभी
ये हिम्मत नगवारी, ज्योति,
चंद्रिका सब,
और
ये सब मुंबई के ही है,
संभव वहाँ के कांदिवली की मेजोरिटी थी, प्रतिभा होंगे,
प्रतिभा म्यूजियम में है,
तो बहुत सफल ट्रेनिंग कहेंगे उसको। ट्रेनिंग में अच्छी कन्याएं निकली और वो कन्याएं अभी बाबा के बड़े बड़े सेवा केंद्र संभाल रही हैं, म्यूजियम संभाल रही है, बहुत अच्छी दीदी की सेवाएं सफल रही। मैं शीलू दीदी से जानना चाहूंगी, आप कैसे पहुंचे तो दीदी की इस ट्रेनिंग में, सेवा केंद्र में?
नहीं, वो तो ट्रेनिंग थी तो कुमारियों को निमंत्रण मिला नर्स सेंटर पर, और मैं तो दीदी को जानती थी अच्छी तरह से, तो हम भी उस ट्रेनिंग में गए। यानी सबको निमंत्रण था, जो भी कुमारियां आना चाहे। अच्छा। कितनी थी कुमारियां? हम लोग ज़्यादा नहीं, करीब 20-25 होगी, 20-25 होगी।
अच्छा, तो दीदी आप जो कह रहे थे कि आपकी जब पढ़ाई घर में, मतलब बंधन भी था और छुट्टी भी नहीं, तो दीदी का उसमें आपके जीवन में क्या रोल रहा?
तो क्या हुआ, मैं पढ़ाई तो करती थी और स्कूल भी जाती थी, फिर कॉलेज में भी आई और मधुबन में भी बीच में 2-3 बार आई। तो एक बार तो मैं छिप गई, यानी घर सब जा रहे थे वापस मुंबई, लेकिन मैं छिप गई। मुझे भी जाना था नीमलौकिक माँ के साथ वापस मुंबई, परंतु मैं कहाँ छिप गई, यानी बाबा सब ढूंढ रहे थे, शीलू गई कहाँ, कहाँ गई, बहुत ढूंढा नहीं मिली। आखिर बाबा ने ना सबको और भाइयों को कहा, इनको ढूंढो, कहाँ चली जाएगी, क्योंकि उनको तो वापस जाना है। तो कहीं मुझे ढूंढ लिया, फिर मैं बाबा के पास गई और बाबा ने कहा, बच्ची तुम कहाँ थी? तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे वापस मुंबई नहीं जाना है, मुंबई मायावी नगरी, माया माया, तो बार बार माया कहती थी, मुझे नहीं जाना है बाबा, मुझे यहीं रहना है। और तो बाबा ने कहा, बच्ची यहाँ स्कूल तो अच्छे है नहीं, आप यहाँ कैसे रहोगी, मुंबई में तो इतने बढ़िया अच्छे अच्छे स्कूल है, तो वहाँ तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कूल है, ये तो गांव है, माउंट आबू तो गांव है, आप मुंबई में जाओ और आपको बहुत अच्छी पढ़ाई भी करनी है, तो बाबा आपको विदेश भेजेंगे, तो आप मुंबई में पूरी पढ़ाई करो। तो फिर मैं गई, बाबा ने कहा, वापस गई। तो मैं कॉलेज में थी, ये 1967 की बात है, और दीदी ने सेंटर खोला 1966 में, 1966 में, तो 1967 में ये ट्रेनिंग रखी थी मैं साथ, तो उस समय मैं इंटर साइंस में थी। उस समय 11-2-2 ऐसे होते थे, 11 कक्षा तक स्कूल और फिर 2 साल कॉलेज, फिर 2 साल डिग्री ऐसे। तो हमारा इंटर साइंस चल रहा था और उस समय हम ट्रेनिंग में आए। अब घर में सब कहे, क्योंकि बड़ा परिवार, तो सब कहे कि आप मेडिकल लाइन लो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, वो लाइन लो, क्योंकि हमको डिसाइड करना था डॉक्टरी लाइन या इंजीनियरिंग लाइन, मैथमेटिक्स लेनी है या बायोलॉजी लेनी है, वो डिसाइड करना होता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब होता है। तो मैंने उस समय दीदी से पूछा, दीदी नहीं, फिर मैंने बाबा को पत्र लिखा, 1967 की बात है, मैं इंटर साइंस में थी, बाबा मैं क्या करूं। तो बाबा का पत्र आया मुझे, बाबा हर एक को पत्र लिखते थे, जो बाबा को पत्र लिखते थे उनको जवाब जरूर मिलता था बाबा से। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा, बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है, बाबा चाहते हैं कि तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। रूहानी डॉक्टर माना लौकिक पढ़ाई मेडिकल लाइन की मत लो, तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, इतनी बाबा की आश है तुम्हारे में। तो मैंने सोचा, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, बस बाबा की सेवा में लग जाऊंगी। लेकिन घर से पत्र तो मिलना नहीं था, क्योंकि बंधन था, बड़ा परिवार था, ऐसे कैसे छोड़ेंगे। और सेंटर पर दादी प्रकाशमणि रहती थी उस समय, हमारी टीचर गामदेवी सेंटर बॉम्बे में, तो दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में रहते थे। तो दादी को मैंने कहा, दादी मुझे सेंटर पर रहना है, बाबा ने भी कहा है कि रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करनी है। तो दादी ने कहा, मैं सेंटर पर तुमको तब रखूं जब घर से चिट्ठी हो। ऐसे कैसे रखूं? अब घर वाले चिट्ठी देने को तैयार नहीं, तो न घर वाले चिट्ठी देने को तैयार, न सेंटर पर रखने के लिए तैयार, दोनों ही बातें नहीं थी, तो मैं क्या करूं? तो उसी समय मैं ट्रेनिंग में गई थी और मैंने निर्मला दीदी से पूछा, दीदी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे क्या करूं आगे। तो दीदी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारी दीदी की ये विशेषता है, इतना सहज कर देती है कि ऐसे नहीं ये करो या ये करो या वो करो, नहीं, एक ढंग से जो करना है वो फाइनल, दीदी कहती है। तो दीदी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपको अगर घर से भी छुट्टी नहीं मिल रही है और पत्र नहीं दे रहे हैं और सेंटर पर भी आपको नहीं रख रहे हैं, तुम 2 साल और पढ़ाई कर लो, BSc कर लो, डिग्री कोर्स ले लो, तो फिर देखो बाबा आपको मदद करेंगे, अभी आप पढ़ लो आगे, बाबा भी यही कहते ना, तो पढ़ लो। तो फिर मैं BSc किया और साइंस में बायोलॉजी लिया, क्योंकि वो लिया हुआ था। लेकिन जैसे हमारा फाइनल ईयर था वो 1969 था, और उसी साल बाबा अव्यक्त हो गए। तो जनवरी में अव्यक्त हुए, मेरे तो अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होने थे, मैं तो नहीं आई, लेकिन मेरी लौकिक माता जी और मौसी थी, तो वो दोनों मधुबन आए थे बाबा के अव्यक्त होने पर, तो मैं तो वहीं थी घर में। लेकिन मुझे बहुत खींच थी कि बाबा अभी मुझे पढ़ाई आगे नहीं करनी है। लेकिन फिर बाबा ने जब 21 जनवरी को अव्यक्त बाप दादा ने भविष्य के प्लान बताए कि यहाँ पर बठिया रखो, ट्रेनिंग रखो, और साकार में बाबा ने ये जो ट्रेनिंग सेक्शन है ना, उनकी बाबा के दिनों में ये बन रहा था, तो बाबा ने कहा था कि यहाँ ट्रेनिंग होगी, मधुबन में ट्रेनिंग होगी, और खास दादी जानकी को बाबा कहते थे बच्ची आपको ट्रेनिंग करानी है कुमारियों की, और आपके लिए इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा, दादी हमेशा बताती थी। तो इंद्रप्रस्थ की जो बिल्डिंग है ना, जहाँ दादी जानकी का रेजिडेंस है, तो आपको वहाँ रहना है और कुमारियों की ट्रेनिंग करानी है। और अव्यक्त बाप दादा ने यही कहा, क्योंकि जैसे दीदी ने कहा कि बाबा थे तो और तो कोई एक्टिविटी नहीं थी, बस बाबा मम्मा के साथ ही सारी एक्टिविटी होती थी। सवेरे भी बाबा क्लास कराते थे, मुरली सुनाते थे, फिर चेम्बर होता था, बाबा के साथ ही बैठते थे, खेलते थे, फिर ब्रह्मा भोजन भी करते थे, झूले पर भी झूलते, बस बाबा के सिवा और कुछ नहीं, मधुबन माना बाबा। अब बाबा अव्यक्त हो गए तो मधुबन में कौन आएगा, क्या होगा, तब अव्यक्त बाप दादा ने भविष्य के प्लान बताए। तो 1969 मई में कुमारियों की ट्रेनिंग हुई यहाँ, जिसमें हमारी आशा बहन जो ORC में है, आरती बहन इंदौर की, और भी कई मुन्नी बहन भी उसी समय उसी ट्रेनिंग में थी,
मीरा बहन और जयंती बहन,
मीरा बहन नहीं थी,
नहीं
नहीं वो तो पता नहीं उस समय, तो हम लोग वो बहनें थी, चंद्रिका बहन जो ये अहमदाबाद महादेव नगर की उस समय थी। और उनके पहले मार्च अप्रैल में 2 महीने की ट्रेनिंग हुई, जिसमें वेदांती बहन वो सेंटरों पर रहते हैं रहना शुरू कर दिया था, और हम लोग वो कुमारियां थी जो कॉलेज से आई थी, हम आशा बहन भी कॉलेज पढ़ के आई थी, चंद्रिका बहन भी लॉ कर रही थी, वो भी पढ़ाई करके आई, मैं BSc करके आई, ऐसे हम लोग 30 कुमारियां थी। और फिर कैसे बाबा अव्यक्त बाबा हम एक ना हर तीसरे चौथे दिन आते थे हम कुमारियों से मिलने के लिए, और ये मेडिटेशन हॉल नहीं था, केवल हिस्ट्री हॉल था, और हम ट्रेनिंग सेक्शन में रहते थे, वही भोजन मिलता था, वहीं पर हम पढ़ते थे, नीचे आना ही नहीं, केवल बस बाबा की मुरली, बाबा की मुरली भी वहीं चलती थी, केवल अव्यक्त बाप दादा से मिलन के लिए हिस्ट्री हॉल में आते थे। ये मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, ये मेडिटेशन हॉल 74 में बनाए बाबा के अव्यक्त होने के बाद, वो हिस्ट्री हॉल 62 में बनाए बाबा के होते हुए। तो फिर क्या था, तो बाबा ने हमसे कई बार पूछा, सबसे पूछा कि आप सब रेस में दौड़ो और बाबा आपको नंबर देगा, बाबा नंबर देगा। तो सब बहुत रेस में दौड़ रहे थे, अच्छी तरह अच्छी 1 महीने की ट्रेनिंग चली, दादी चंद्रमणि हमारी टीचर थी, और भी कई बड़ी बड़ी दादियां हमारी टीचर थी, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा ने सारी जो दादियां थी, जब वो कराची से यहाँ आए और सेंटर खुले तो सब दादियों को सेंटरों पर भेजा, लेकिन अव्यक्त हुए जब बाप दादा ब्रह्मा बाबा, तो बाबा ने सब दादियों को जैसे मधुबन में बुला लिया, उस पे दादी प्रकाशमणि मुंबई में रहती थी, तो दादी को भी मधुबन में बुला लिया, औरों को भी ऐसे बुला लिया, तो हमारी ये सब टीचर्स थी दादियां। और फिर बाबा ने अंत में पूछा, अंत में कहा कि अभी 1 महीने की थियोरिटिकल ट्रेनिंग की है, 1 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाएंगे तो बाबा नंबर देंगे। तो सब ने हाथ उठाया हम सेवा केंद्र पर जाएंगे। तो ऐसे ट्रेनिंग हुई हमारी और हम सब सेवा केंद्रों पर गए। 30 कुमारियां थी, सब के सब सेवा केंद्रों पर गई। ऐसी ट्रेनिंग हुई मधुबन में।
कितनी पावरफुल ट्रेनिंग रही होंगी, जो पिलर्स बन गए हैं अभी ये सभी।
दादी जानकी भी हमारी मुख्य टीचर थी, दादी जानकी और चंद्रमणि दादी, कूज दादी, ये सब दादियां थी।
और एक बात जो दीदी ने हाईलाइट की, शीलू दीदी ने निर्मला दीदी के प्रति, कि दीदी की विशेषता है, कोई भी अगर कोई बात दीदी से पूछेगा तो मझधार में नहीं रखेगी, सीधा एक धक से इस पार या उस पार की बात कहेगी। और न सिर्फ कहेगी, मैंने अनुभव से कईयों से जो शेयर करते हैं दीदी की विशेषताएं, बोले दीदी धक से आपको बोल देगी और उसने जो बोला वो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है, ये दीदी की विशेषता है। तो वही देखा कि कैसे शीलू दीदी के जीवन में भी दीदी की बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। अब मैं निर्मला दीदी से जानना चाहूंगी, दीदी भारत में सेवा आपने आरंभ कर दी, फिर आपको विदेश सेवा के लिए कैसे चुन लिया गया?
1971 जुलाई में,
जनवरी में पहले दिल्ली में योगा कॉन्फ्रेंस हुई और उस योगा कॉन्फ्रेंस में मेरा, जगदीश भाई, न्यूयॉर्क के मोहिनी बहन आदि आदि सबका लेक्चर था। हमारा टॉपिक था मेडिटेशन एंड मेडिकेशन, योगा और मेडिसिन। तो हमारे ग्रुप में बहुत फॉरेनर्स आए थे और उस ग्रुप में इंडियन भी थे, तो इंडियनों ने सवाल पूछना शुरू किया, पवित्रता क्यों धारण करते हैं, पवित्रता क्यों धारण करते हैं, इंडियन ने पूछा,
इंडियन ने पूछा।
और वो सारा इंग्लिश में था, तो प्रवचन तो हमको आनंद किशोर भाई ने लिख के दिया था, मैंने पढ़ के सुनाया। और प्रश्न उत्तर था, तो जगदीश भाई भी उसी में बैठे थे, तो मेरी बाजू में आ गए, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। फिर उसी कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिका के भाई ने निमंत्रण दिया कि जुलाई में कॉन्फ्रेंस हमारे पास हो रही है, आप जिसको भी आना है सब आ सकते हैं। तो समझो 54 में दादी प्रकाशमणि, रतनमयी दादी और आनंद किशोर दादा विदेश टूर पर गए थे, जापान में निमंत्रण मिला था, फिर उन्होंने एशिया का टूर किया। जगदीश भाई ने तो हाँ ज़्यादा एशिया का टूर किया उन्होंने जापान से रास्ते में। तो जब ये निमंत्रण मिला और मैं मधुबन में आई, मैंने दादी जी से पूछा कि ये जुलाई के कॉन्फ्रेंस में कौन जाएगा। दादी ने पूछा तुमको जाना है, मैंने कहा मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे लौकिक पिता की इच्छा थी कि मैंने MBA BS यहाँ किया इंडिया में, तो मैं एडवांस स्टडी के लिए विदेश जाऊँ। और मैंने कहा मुझे गाँव में सेवा करनी है, बड़ी डिग्री लेके क्या करूँगी, इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं जाना है। परंतु मुझे मालूम था कि यदि कुछ खर्चा करना है वो करेंगे, तो मैंने कहा मेरे लौकिक पिता खर्चा करेंगे। तो उस समय उन्होंने फाइनल किया कौन कौन विदेश जाएगा, तो मैं, रोजी बहन, उसके पिता भी धनवान थे, उन्होंने खर्च किया, रमेश भाई, जगदीश भाई और शील दादी, तो मेजोरिटी ने तो अपना अपना खर्च किया, सिर्फ जगदीश भाई का यज्ञ ने किया। हम पांच जने विदेश सेवा पर जाने के तैयार हुए जुलाई में। तो हमारा पहला स्टॉप था लंदन। लंदन में उस समय ऑलरेडी 10-12 इंडियन स्टूडेंट थे, तो जगदीश भाई ने और हम लोगों ने डिसाइड किया। जगदीश भाई कहे हम टूर करके सारा, हम लोगों ने टिकट बनाई थी राउंड द वर्ल्ड ट्रिप के, लंदन, अमेरिका, फिर विदेश में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग आदि की हमने टिकट बनवाई। पर लंदन में सोचा कि ऐसे टूर करके नहीं जाना है, कहाँ तो सेंटर खोलना है, और लंदन में ऑलरेडी 10-12 स्टूडेंट थे। जयंती बहन की माता जी रजनी बहन वो क्लास कराती थी अपने घर में, उसका पति मुरली भाई ज्ञान में नहीं था पर सहयोगी था, तो वो अपने घर में क्लास कराती थी। तो सभी से वायदा कराया कि यदि हम सेंटर खोले लंदन में तो कौन कितना पैसा देगा, क्योंकि लंदन में तो यहाँ से तो पैसा नहीं भेज सकते हैं, लोकल लोगों को सपोर्ट करना होगा। तो उन्होंने कहा भले भले सेंटर खोलो, हम लोग खर्चा करेंगे। तो हम लोगों निकल तो गए, पर उन्हों को काम दिया कि मकान ढूंढना। तो हम लोग तो समझो लंदन से फिर न्यूयॉर्क में आए, फिलाडेल्फिया गए, सैन फ्रांसिस्को, एलए, सब स्थान पर गए और सेवा की। पर न्यूयॉर्क में हमने रियलाइज़ किया, क्योंकि लंदन में तो रजनी बहन के घर में हम पांच ठहरे, विदेश में पांच को ठहराना अपने घर में सहज नहीं है, और इंडियन तो हम यूज्ड तो नहीं है ना सेवा करने के लिए, स्थूल सेवा। तो रजनी बहन को खाना भी पकाना, सफाई भी करनी, ये भी करना। तो हमने रियलाइज़ किया कि पांच जने तो बहुत है। न्यूयॉर्क में भी पांचों साथ में रहे, हम लोगों ने अपार्टमेंट हायर किया और वहाँ रहे। पर वहाँ आकर हमने सोचा कि अभी हम दो ग्रुप में जाएं, अलग अलग तीन ग्रुप किया। जगदीश भाई अकेला गया, मैं और रमेश भाई गए, और शील दादी और रोजी बहन अलग गए। तो रोजी बहन के भाई अमेरिका में थे, तो उनके पास ये लोग गए और फिर आगे बढ़े। और जगदीश भाई अकेले गए और मैं और रमेश भाई साथ में गए। तो सैन फ्रांसिस्को में हम पहुँचे और लंदन से पत्र आया कि हमें फ्लैट मिल गया है। तो दादी जी को, प्रकाशमणि दादी यहाँ थी, तो कहा कि टीचर भेजो, फ्लैट मिल गया। दादी कहे हम टीचर कहाँ से लाए, आप पांचों अंग्रेजी जानने वाले हैं, हम दूसरा तो हैंड नहीं निकाल सकते, आप में से कोई एक लंदन जाएं। तो हम लोगों ने मीटिंग की। शिल दादी कहे मेरी माँ बूढ़ी है, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसको कांध ऐसे ऐसे हिलाती थी, ग्रीन मदर। रोजी बहन कहे मेरी माँ को भी बीमारी है, मुझे जाना पड़ेगा। रमेश भाई कहे मेरा तो बिजनेस है, मुझे जाना पड़ेगा। और जगदीश भाई कहे मेरा भी तो मैगजीन वगैरह लिखना है तो मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। मैं उस समय प्रैक्टिस करती थी, अपने डिस्पेंसरी कांदीवली में खोला था, और एक दूसरी डॉक्टर बहन मेरी बहन की फ्रेंड थी, उसको बिठा के गई कि मैं 2-3 मास में वापस आएंगी। परंतु मैं अकेली रही जो निर्बंधन थे, तो मुझे कहा ठीक है तुम जाओ वापस लंदन। और लंदन आए तो फ्लैट भी मिलना मुश्किल था। जो फ्लैट मिला था वो उसको दूसरे मकान में जाना था, इंडियन था, तो कहे कि जब तक मेरा दूसरा मकान तैयार ना हो आपको मैं ये खाली करके नहीं दे सकता हूँ। तो बीच में समझो 1-2 मास जयंती बहन ने खूब फ्लैट ढूंढे। जब वो फोन करती थी तो इसका आवाज बहुत इंग्लिश था, तो समझते थे कोई इंग्लिश बहन है, पर जब सामने आती थी देखा ये तो सफेद साड़ी वाली इंडियन बहन है। तो कोई फ्लैट देने तैयार नहीं, कहे इंडियन को न पब्लिक प्रोग्राम के लिए कोई हॉल देने तैयार नहीं, कहे कि ये इंडियन लोग हैं, धूप वगैरह करेंगे जैसे आर्य समाजी, तो उनकी छत खराब होती है, और भोजन के सिवाय तो हमारा प्रोग्राम होता नहीं। तो कहा भोजन करेंगे तो फ्लोर खराब कर देते हैं, तो इसलिए पब्लिक प्रोग्राम के लिए न हॉल मिले न रहने के लिए मकान देने तैयार कोई। उस समय 71 में थोड़ा कलर डिस्क्रिमिनेशन था कि काले कलर वालों को कोई देना नहीं है, क्यों इंडियन क्या करते थे, कहेंगे हम 3 जने रहेंगे तो 3 दिन की नौकरी करते थे, 3 रात की नौकरी करते थे तो 6 जने रहते थे। तो इसलिए, और इंडियन का खाना होता है तो मसाले की खुशबू इनको पसंद नहीं आती, इसलिए कोई वेस्टर्नर वहाँ के ब्रिटिश हम लोगों को फ्लैट देने तैयार नहीं थे। फिर जब वो 98 टेनिसन रोड खाली हुआ तब फिर उसमें हम रहने लगे। तो बीच में 1-2 मास हमको कुछ समय हम इलफंड में सतीश भाई और मंजू बहन के पास रहे, और कुछ समय स्लाव में एक परिवार था शर्मा जी का, उनके पास रहे और सेवा की। फिर जब 98 टेनिसन रोड खाली हुआ फिर हम वहाँ रहने लगे, तो हमको 6 मास का वीसा मिला था। तो जब वीसा पूरा होने वाला था तो दादी रतन मोहिनी आई और वो 6 मास रही जी। फिर मुझे कहा कि अभी तो ये थोड़ी अनुभवी हो गई है लंदन की सेवा की, इसलिए इसको ही भेजो। तब हमको दादी ने परमिशन दी, अच्छा तुम अभी डिस्पेंसरी भले बंद कर सकती हो और विदेश सेवा में जाओ।
तो ये रही दीदी की कहानी, कैसे डबल डॉक्टर रहे और फिर रूहानी डॉक्टर की समाज को ज्यादा जरूरत है, इसलिए फिजिकल डॉक्टर वाला रोल बाबा ने भी कह दिया बंद कर दो ताकि फोकस कर सके एक तरफ। अब मैं शीलू दीदी से पूछना चाहूंगी कि शीलू दीदी पहले भारत में ही सेवा की, जैसे कहा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया आपको, और फिर आपका भी अचानक विदेश में नंबर लगा और फिर जैसे आप भारत में रहते दीदी निर्मला के सेवा केंद्र में पहुंच गए, ऐसे विदेश में कब दीदी के साथ आपका मिलाप हो गया, जरा इस पर प्रकाश डालिए।
दीदी के साथ फिर अफ्रीका में मुलाकात हुई, क्योंकि 74 में दादी जी ने वेदांती बेन और हमको अफ्रीका सेवा पर भेजा और हम अफ्रीका में कई देशों में सेवा करने गए, क्योंकि जिसने निमंत्रण दिया उसने कहा एक गुजराती बोलने वाली एक इंग्लिश बोलने वाली दो बहनें भेजो, क्योंकि इंडियंस बहुत थे अफ्रीका के अंदर, तो एक बिजनेसमैन था जिसने निमंत्रण दिया, तो हम दोनों को दादी जी ने अफ्रीका भेजा।
रामू काका
बहुत बहुत ही एकदम, कैसे बाबा कहते लास्ट सो फास्ट, बस वो आत्मा ने कैसे बेहद की सेवा कराई अफ्रीका में, तो बहुत सेवा कराई। और उस समय कई भारत से बहनों को दादी जी ने अफ्रीका भेजा, चंद्रू बहन जो सैन फ्रांसिस्को में है, निर्मला दीदी और भी कई आए। तो फिर उसके बाद मॉरिशस में भी उसने एक मकान ले लिया और सेवा केंद्र खोला, तो दादी जी ने हमको कहा कि अभी आप मॉरिशस में सेवा करो, तो उन दिनों में दीदी निर्मला अफ्रीका आए हुए थे जाम्बिया देश में, हम जहाँ आरंभ की सेवा, तो दादी ने हम दोनों को मॉरिशस भेजा। तो मॉरिशस में हम 3 महीना रहे दीदी निर्मला और मैं, शुरुआत की मॉरिशस में सेवा। अब उस समय इतने स्टूडेंट्स तो थे नहीं और मॉरिशस में इंडियंस बहुत, हिंदी बोलने वाले भोजपुरी बोलने वाले, तो हम सवेरे सवेरे मुरली में, मैं दीदी को मुरली सुनाती थी, दीदी कभी मुझे मुरली सुनाती थी हम दो ही बहनें होते थे। लेकिन फिर कैसे जो हिंदी प्रोग्राम टीवी में देता था वो डायरेक्टर खुद कोर्स करने आया और निर्मला दीदी ने उनको कराया और वो रेगुलर स्टूडेंट बन गया, तो ऐसे करके बहुत सेवाएं शुरू हुई। तो अफ्रीका से फिर मॉरिशस आए, दीदी के साथ ही हम मॉरिशस में 3 मास रहे, फिर दादी जी ने निर्मला दीदी को फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भेजा और भारत से और बहनों को मॉरिशस भेजा जो मेरे साथ रहे। फिर मैं मधुबन पार्टी लेकर आई थी मॉरिशस से, फिर वापस गई, लेकिन फिर 6 मास के बाद 76 में मैं मधुबन आई और तब से दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, तो 76 से मैं मधुबन में ही रह रही हूँ, क्योंकि विदेशियों की सेवा और साथ साथ राजयोग शिविर की सेवा ये दोनों शुरू हो चुके थे, तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, फिर और बहनों को भेजा अफ्रीका में और मॉरिशस में, तो ऐसे ही सेवाएं हुई। ओम शांति।
तो बहुत सुंदर कि मॉरिशस में भी सेवा का बीज डालने के लिए दोनों बाबा के नूरे रतन वहां पहुंचे, फिर तो बाद में और निमित्त वहां बने, लेकिन बीज डालने के निमित्त बने। तो ऐसी दोनों महान मूर्तियां आज हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं कैसे बाबा की आज्ञा अनुसार चले, तो भारत की सेवा में भी हाजी किया, विदेश की सेवा में भी हाजी किया और कैसे बाबा ने पुनः उन दोनों को हेडक्वार्टर में बुला लिया। दीदी ने तो अपने मुख से बताया, शीलू दीदी ने, कि 76 में दादी ने आपको यहाँ रहने का ऑफर दिया और निर्मला दीदी आपको कैसे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ, मतलब 2008 में हम सभी जानते जब इन्होंने शरीर छोड़ा था हमारी मनोहर दादी ने, लेकिन तब यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई ज्ञान सरोवर में, एक जना चाहिए था, तो हम तो देख रहे अभी दीदी बैठे, लेकिन दीदी वो शुरुआत कैसी हुई आपके निमित्त बनने की?
दादी मनोहर ने नवंबर में शरीर छोड़ा और अक्टूबर से बीमार तो थी, तो 2008 अक्टूबर में चार्ली आया था और मैं भी यहाँ,
चार्ली ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भाई,
वो अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर है और मैं वहाँ रहती थी। तो पहले तो दादियों ने आपस में मीटिंग की कि अभी मनोहर दादी शरीर छोड़ेंगी किसको बुलाएंगे, तो यहाँ के सब बड़ी बहनें कहा कि हम तो नहीं आ सकते क्योंकि प्रेम बहन, अचल बहन, सरला दीदी, अहमदाबाद वाली, संतोष दीदी, सभी से पूछा, सभी ने कहा हम तो नहीं आ सकते यहाँ। तो जानकी दादी ने सोचा मुझे यहाँ बुलाने का, परंतु पहले उन्होंने चार्ली से पूछा कि हम यहाँ बुलावे निर्मला को, तो चार्ली ने कहा ठीक है हम चला लेंगे, क्योंकि मैं 30 साल रही 78 से 2008 तक वहाँ थी। जब मैंने बम्बई छोड़ा तो 66 में शुरू किया, 71 में विदेश चली गए, 5 साल ही
जी
पालना दी बम्बई में जी। और दिव्या और कला दादी को सौंप कर, नहीं उस समय प्रभा बहन को खास बुलाया भरूच से,
भरूच
के आप आके सेवा करो, तो प्रभा बहन ने फिर दिव्या को तैयार किया। दिव्या कुछ 1 साल से ही ज्ञान में होंगे, तो उनको छोड़ के मैं चली गई और विदेश में तो 30 साल सेवा किए। तो सब तैयार थे, वैसे सब अपना अपना देश चलाते थे, 17 देशों में सेवा शुरू हुई, परंतु मैं साल में एक बार जाती रही दूसरे शहरों में, बेस हमारा ऑस्ट्रेलिया था। तो चाली ने कहा ठीक है भले दीदी यहाँ आ जावे, हम कोई हर्जा नहीं, परंतु मेरा टूर का प्रोग्राम बना हुआ था जनवरी फरवरी का, तो मैंने कहा मैं फरवरी 2009 में यहाँ आई। और उस समय मुन्नी बहन ने कहा कि भाई तुम 6 मास यहाँ रहो। जब दादी और मुन्नी बहन ने फाइनल किया, विदेशी सीजन है 6 मास अक्टूबर से मार्च एंड तक, तो कहा तुम यहाँ रहना और मार्च से सितंबर तक विदेश यात्रा ऐसे करो, 15 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ। तो ऐसे 2018-19 तक कर किया, फिर तो 2 साल कोरोना का था तो इसलिए गई नहीं हूँ तो यहाँ ही रह गई हूँ।
तो दीदी आपने एक धक से ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया ना फिर तो ये भी हमें बहुत सीखने को मिलता है कि भले बाबा किसी भी सेवा केंद्र या सेवा के लिए हमें जिम्मेवार बनाते हैं, लेकिन अगर बाबा कहे कि छोड़ो तो उस समय हमें उससे डिटैच भी अवश्य हो जाना चाहिए। और जब दीदी ने डिटैच होकर हाँ में हाँ किया बड़ों के, आज हम देखते हैं दीदी यज्ञ के लिए ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में हम सबके बीच में। तो बाबा को हमारा भविष्य पहले से पता है, हमको अपनी चिंता रहती ना हम ये छोड़ देंगे फिर नया स्थान शुरू करेंगे कैसे होगा, लेकिन बाबा को हमारा फ्यूचर पहले से ही क्लियर होता है। और इसलिए अगर बाबा की हाँ में हाँ करें तो अवश्य ही हम दिन दुनी रात चौगुनी इस विधि से जंप करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जो इन दोनों दीदियों के अनुभव से हमने आज सीखा। तो दोनों
दादी जी ने मुझे कहा कि बस अभी मॉरिशियस नहीं जाना है, यही रहना है। जी दादी, मैं अफ्रीका से मॉरिशियस आना है। जी दादी।
तो आज के इस दोनों दीदियों के अनुभव से हमें बहुत कुछ प्रैक्टिकल में सीखने को मिला। हम दोनों दीदियों का अपना अमूल्य समय निकाल कर आए और हमारे साथ अपने जीवन के वो अनुभव सुनाए जो शायद कभी हमने सुने नहीं भी थे और सुने भी होंगे कहीं किसी रिकॉर्डिंग में, लेकिन जो रूबरू बैठकर सुनते हैं उसका तो कुछ अलग ही मन पर प्रभाव पड़ता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला देवी जी और शीलू देवी जी का.
इसमें तू ही तो बसता.